सबकी चर्चा का विषय, सबकी उत्सुकता को चरम सीमा पर पहुंचा देने वाला मेरे विवाह का वह मंगल महोत्सव पूर्ण हो गया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने धूमधाम से मेरा विवाहोत्सव संपन्न होगा। मैंने गृहस्थ जगत में एक उत्तरदायी पति के रूप में प्रवेश किया। मेरे जीवन नाटक का दूसरा अंक प्रारंभ हुआ। श्रृंगार और वात्सल्य से भरा हुआ होता है यह अंक। इस अंक में मनुष्य का मन प्रायः अत्यधिक रम जाता है। इतना ही नहीं, वह शिथिल भी होकर चक्कर काटता रहता है। वैवाहिक जीवन में सभी वस्तुएं और दिशाएं गुलाबी रंग की हो जाती। जीवन संगीत का वह वसंत वैभव राग होता है। अब वही राग मुझको अलापना था, क्योंकि मेरा शुभ विवाहोत्सव संपन्न हो चुका था। उस महोत्सव के कुछ प्रसंग अभी मेरे मन में चक्कर काट रहे थे। वसंत ऋतु के चले जाने पर भी जैसे बकुल पुष्प की गंध आती रहती है, वैसे ही विवाह में अनेक राज्यों के प्रसिद्ध राजगण और नगरजन आए थे। एक सारथी पुत्र के विवाह में क्षत्रिय कुल उत्पन्न राजागण उपस्थित रहे, यह घटना वास्तव में भी अभूतपूर्व थी। राजा दुर्योधन ने मेरे लिए सबको विशेष निमंत्रण पत्र भेजे थे। उनका प्रेम सचमुच ही असीम था। कुरुवंश का राजा जिसको एक बार अपना कह देता है, उसको वास्तव सदैव के लिए अपना लेता है। इसकी प्रतीति उसके प्रत्येक कारण मुझे दिखाई देती थी। मेरे विवाह के समय पर प्रांत से आए कोई भी हस्तिनापुर में आता तो उसको यही लगता कि कुरुवंश के किसी राजकुमार का विवाह हो रहा है। सचमुच ही मैं भाग्यशाली था। विवाह का समय छोड़ के आनंद का भला क्या ठिकाना। अपनी अवस्था भूलकर प्रौढ़ की तरह वह क्या चाहिए क्या नहीं इसकी पूछताछ स्वयं करता हुआ सारे मंडप में चक्कर लगाता रहता था। सदा धर्म आत्मा कर्तव्य आदि गहन विषयों पर घंटों बात करने वाला अश्वत्थामा भी मेरे विवाह में उत्साह से उपस्थित हुआ था। उसने अपने पवित्र हाथों से मेरे मस्तक पर मालाएं बांधी थी। बांधते समय उसने धीरे से मेरे कान में कहा था, सावधान कर्ण, इस अखाड़े में आज तक कोई अजेय नहीं रहा। हल्दी के समय स्त्रियों में से किसी ने प्रयास करते हुए कहा था, वर देवता की देह पर हल्दी की क्या आवश्यकता है, हल्दी क्या सुनहरे रंग की है। मुझको अब भी वह याद है। संध्या समय गोधुली बेलाम विवाह हुआ। विशाली ने बड़े बड़े श्वेत शुभ्र कमलों की माला मेरे गले में सभी ने डाल दी। नगाड़े और शहनाइयों की मिश्रित ध्वनि से समस्त राजनगर गूंज उठा। चंदन जल और निशिगंध के अर्घ से वातावरण में मादक सुगंध भर दी। पश्चिम क्षितिज पर और दोनों दिनों की और पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक ठहर कर सूर्यदेव ने हमको आशीर्वाद दिया। इन कृत्यों में नृत्य की तरह सायंकालीन नमस्कार शांति से नहीं कर पाऊंगा यह सोचकर वेदी पर ही मैंने उनको प्रणाम कर लिया। मैं चतुर्भुज हो गया। विवाह में अनेक उपहार दिए गए थे। इनमें से बहुत से आभूषण थे। रेशमी वस्त्र थे, रूपाली और सुनौली मुठों में खड्ग थे, वैडूर्य माणिक मोती और पन्ने थे। लेकिन एक उपहार बड़ा अद्भुत था। पांडवों की ओर से केवल एक ही उपहार आया था, और भी राजमाता कुंती देवी की ओर से। उस उपहार में एक तो नीले रंग की साड़ी और एक गोह का अंगुली त्राण था। उस नीली साड़ी पर सुनौले बेल बूटे थे। वह महावस्त्र मूल्यवान और अत्यधिक सुंदर था। बहनी और विशाली ने झुककर राधा माता पिताजी को प्रणाम किया। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, युग युग जीव, मन भराया। ऐसा लगा जैसे उनके यहाँ जन्म लेना सार्थक हो गया हो। मेरी बाँह पकड़कर मुझको ऊपर उठाते हुए राधा माता बोली, कर्ण सुखी हो। उसके वृद्ध खुरदरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मैं बोला, कर्ण नहीं वसु कहो माता। मैं संसार के लिए कर्ण हूँ, पर तुम्हारे लिए तो वसु ही हूँ और स्वतः वसु ही रहूँगा। मेरी आँखें आर्द्र हो गई। उसने मुझको अपने हृदय से लगा लिया। क्षण भर को अपना सिर मैंने माता के कंधे पर रख दिया। सामने एक महल में गवाक्ष से खड़ी हुई राजमाता कुंती देवी मुझे स्पष्ट दिखाई दी। वे शायद हमारी ओर ही देख रही थी, पर उनको अपने आंचल में आंखें पोंछते हुए देखा। हो सकता है कि मेरी ये आंखें अश्रुपूर्ण होने का मुझे वैसा आभास हुआ हो, नहीं तो राजा माता आंचल में अपनी आंखें क्यों पोंछने लगी। दूसरे ही क्षण गवाक्ष के कपाट भी तुरंत बंद हो गए। इन कपाटों के रोशनदान पर पड़े हुए अस्तंग सूर्य किरण भी क्षण भर में यह दृश्य हो गए। विशाली का हाथ मैं अपने हाथ में ले लिया। विश्व के प्रलय काल में उसका हाथ अभी मेरा सच्चा साथी था। अखाड़े में अर्जुन को चुनौती देने वाला सूत पुत्र का विवाह इतनी धूमधाम से संपन्न हो गया, यह राजमाता कुंती देवी नहीं देखना चाहती थी। कहीं इसीलिए तो उन्होंने माल के कबाक से कपाट उन्होंने इतनी जोर से बंद नहीं कर दिए। यूं ही वह विचार मेरे मन में तैर गया। 7. जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य चाहे जितना प्रयत्न करे फिर भी वह उन सभी घटनाओं को याद नहीं रख सकता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि भूलने का प्रयत्न करने पर भी वे भुलाई नहीं जाती। जल में रहने वाला मगर जैसे एक बार पकड़े हुए भक्ष्य को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता, वैसे ही मन भी उन घटनाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। मन की पेटिका में ऐसी घटनाओं के अनेक महीन रेशमी वस्त्र रखे रहते हैं, साथ ही कुछ छोटे मोटे वस्त्र भी रहते हैं। विवाह के बाद की मधुर मिलन की पहली रात को संसार का क्या कोई पति की कोई पत्नी कभी भूल सकी है। आह, यूं तो सभी अच्छी स्मृतियाँ सुगंधित पुष्प जैसी होती हैं, परंतु उस रात की याद तो मत्त गंध से परिपूर्ण किवणे की बाल ही होती है। यह रात होती है संकोच सम्मोह और समर्पण की। उस रात का अर्थ है दो मनों का अबोध और मौन संभाषण। छी, शब्द से उसका भली प्रकार वर्णन किया ही नहीं जा सकता। विश्व निर्माण रूपी इस असीम यज्ञ में स्त्री पुरुष के निर्माण कार्य में परमात्मा का यदि कोई वास्तविक उद्देश्य है तो यह रात उस यज्ञ की अंतिम पवित्र पूर्णाहुति है। आज भी वह रात मुझको ज्यों के त्यों याद है, जैसे अभी कल ही बीती हो। विशेष बात यह थी कि वह रात पौर्णिमा की थी, शरद ऋतु की पौर्णिमासी। निशिगंध के छोटे छोटे श्वेत और सुगंधित पुष्प सचे हुए शीशम की काली लकड़ी की शैया पर विशाली शलज बैठी हुई थी। शयन कक्ष में जैसे मैंने प्रवेश किया, वह वस्त्र संभालते हुए उठ खड़ी हुई, वसे झुकाए खड़ी थी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। मैं गवाक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां से आकाश का पूर्ण चंद्र दिखाई पड़ रहा था। अपनी रूपहली चांदनी का घट वह मुक्त हस्त से पृथ्वी पर उलेर रहा था। सारा हस्तिनापुर शांत था। गंगा की ओर से शीतल पवन के झोंके माल में आ रहे थे। वे मुझको मानो पूछ रहे थे, गंगा को भूल गया क्या? तुम दोनों का आलिंगन सबसे पहले तो उसी ने देखा है। मैंने गंगा के पात्र की ओर देखा। दूर चांदनी में वाता हुआ उसका रूपाला प्रवाह गिरहवाज कबूतर की तरह दिखाई दे रहा था। उस दिन घाट की सीढ़ियों पर मूर्छित विशाली को देखकर भी मुझको ऐसा नहीं लगा था। धीरे से गवाक्ष कपाट बंद कर पलंग की ओर जाता हुआ मैं उससे धीरे से बोला, अब यदि दोबारा तुम गंगा में गिरोगी तो मैं तुमको पानी से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं कोई धीवर नहीं हूँ जो गंगा में डूबने वालों को बचाता रहूँ। यद्यपि वह मन ही मन हंस रही थी, फिर भी उसके गालों में मोहक गड्ढा बन गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। अभी वह पर्वत अकुंठन में बैठी थी। मैंने फिर कहा, इस राजभवन में अनेक पाषाण मूर्तियाँ खड़ी हैं, उनमें तुम एक और पाषाण प्रतिमा की वृद्धि करना चाहती हो क्या? इस तरह कब तक खड़ी रहोगी? यहाँ आकर बैठ जाओ। वह अवगुंठन में नीचे बैठ गई। बैठते समय उसकी साड़ी पर बने हुए सुनहली जरी के बूटे समय के प्रकाश में चमकने लगे। उनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजमाता द्वारा उपहार में भेजी गई साड़ी थी। उसने वही साड़ी क्यों चुनी थी? मैंने उत्सुक होकर उससे पूछा, वृशाली तुमने आज यही साड़ी क्यों पहनी है? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? वस्त्र संबंधित जिज्ञासा का मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। वह बोलने लगी, आपको नीले आकाश में सुनहले सूर्यदेव की ओर देखना अच्छा लगता है, यह सुना है मैंने। इस नीली साड़ी पर वैसे ही सुनहले बूटे हैं, इसीलिए, उसने अत्यंत धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज गाय के गले में बधी मधुर घंटी जैसी थी। आज पहली बार ही मैं सुन रहा था। उसकी आवाज की अपेक्षा उसका उत्तर ही मुझको अधिक अच्छा लगा। उसने मेरे संबंध में और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर ली है भगवान जाने। उसके हनु पकड़ कर ऊपर उठाते हुए मैं उससे कुछ कहने ही जा रहा था कि उसने पलंग पर शैया के नीचे हाथ डालकर तह किया हुआ एक पस्त निकालकर मेरे आगे रख दिया। उत्सुक होकर मैंने देखा, वह मेरा उत्तर ही था। उस दिन घबराहट में वह मेरा उत्तर ही अपने साथ ले गई थी। उसको उसने आज तक संभाल कर रखा था। मैंने हाथ में लेकर उसको झटका, उसको उसमें से नीचे कुछ गिरा। झुककर उसे उठाकर आश्चर्य से हाथ में पकड़ लिया। वह गो का बना अंगुली त्राण था। विशाली की कुशाग्र बुद्धि पर मुझको अतिशय आश्चर्य हुआ। अपना पति धनुर्धर है यह जानकर राजमाता कुंती देवी द्वारा भेजा गया अंगुली त्राण मुझे देने के लिए वह संभाल कर ले आई थी। मैंने उसको उंगली पर चढ़ा लिया। एक विचित्र संयोग कि मुझको रह रहकर निरंतर प्रतीति होने लगी। विशाली ने ठीक वही वस्तुएं क्यों चुनी थी जो राजमाता के द्वारा यहाँ से आई थी? प्रयत्न करने पर भी इसका उत्तर मुझको नहीं मिल सका। यूँ जीवन में सभी घटनाओं को उत्तर मनुष्य को मिलते ही कहाँ, अंत में मेरे विचार करना ही छोड़ दिया। दोनों हाथों में उत्तर ये पकड़कर उसको विशाली के सिर पर से पीछे डालकर उस फंदे से विशाली को अपनी ओर खींचता हुआ मैं बोला, अपने पति को क्या क्या अच्छा लगता है यह जानने की बुद्धि तुम लोगों में जन्मजात होती है क्या? लेकिन पतिदेव अपने लाडली पत्नी के लिए क्या क्या लाए हैं? उसने मेरी छाती पर अपना सिर टेकते हुए धीरे से कहा। मैंने रेशमी कमरबंद में मध्य प्रयाग में संगम पर फूटे घड़े का टुकड़ा उसके सामने करते हुए कहा, प्रयाग का यह सोना। उसने तत्क्षण वह मेरे हाथ से छीन लिया। उसके कपूल आरक्त हो उठे। लजाकर उसने अपना मुंह मेरी छाती में छिपा लिया। उसका राजमुकुट जैसा गोल गौरवर्णीय मुख मैंने अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ लिया। हम दोनों के बीच का अंतर कम हो गया। धीरे धीरे से भवन की इंगुदी के समय को संकेत करते हुए बोली, वे देख रही हैं ना? मैंने हंसकर उसका मुख छोड़ दिया और तल्प पर से उठ खड़ा हुआ। एक एक करके भवन की सभी समाइयाँ मैंने फूक से बुझा दी, फिर तल्प पर आकर बैठ गया। उसको अंक में भरकर बोला, अब तो कोई नहीं देख रहा है तुमको, अभी सब दिए कहाँ बुझे? उसने उल्टा प्रश्न किया। उसका तात्पर्य मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया। एक दुष्ट निर्लज्ज चंद्र किरण गवाक्ष के झरोके से भीतर आधमकी थी। उसको देखते ही मैंने समझा कि यह उसकी शिकायत कर रही थी। उस किरण रेखा की ओर उपेक्षा से देखता हुआ बोला, आकाश में दूर स्थित उस चंद्र के बारे में कह रही हो? अची जब से विश्व का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक न जाने कितनी प्रणय युगल रातों में इसने देखे हैं, यह इसको भी याद नहीं होगा। फिर भी मिलन में बाधा डालने वाली उस किरण का मैंने मन ही मन बहुत रुष्ट हो गया था। चंद्र नहीं, और भी दो ऐसे दीप हैं जो चंद्र की रूपहली चांदनी को भी लज्जित कर रहे हैं, कभी न बुझने वाले। आप अपने होठों से जिन पर कभी फूक न मार सके ऐसे। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखते हुए बोली। कौन से? मैंने जानबूझकर पूछा। उसके कथन का लक्ष्य समझना कठिन नहीं था। आपके कानों के, सिर झुकाकर मन मन हंसती हुई वह बोली। फिर वही मधुर गड्ढा उभरा। वाह विशाली, इतनी चतुराई तुमको किसने सिखलाई? मैंने उसका मुंह पुनः अपनी हथेलियों में ले लिया। मेरे चमचमाते हुए मांसल कुंडलों से बाहर निकलने वाले नीली सी रूपाली किरणें उसके गौरवर्ण गोलाकार मुख पर फैल गई। उसके गौरवर्णी गाल उसके नीले गोरे दिखाई देने लगे। कैसे दिखाई दे रहे थे? उफ, ढूंढ ढूंढ कर हार गया और कोई उपमा नहीं मिली। पूर्णिमा का पूर्ण विकास विकसित विशाल चंद्र अरुंधति को लेकर आकाश में धीरे धीरे ऊंचा चढ़ने लगा। गवाक्ष के अधगुले कपाटों के झरोखों से निर्भय होकर शयन कक्ष में घुसने वाली गंगा तट से आती आती ठंडी हवा के झोंकों से सिहरन पैदा कर रहे थे। 8 विशाली के साथ मेरे दिन आनंद से बीतने लगे। वह एक आदर्श पत्नी थी। पत्नी ही क्या, बहन, कन्या, पुत्र, वधु, भाभी, सभी नातों पर मुझ पर आदर्श लगती थी। मैं तो उसके साहचर में यह भी भूल गया कि इस समय राजनगरी में मेरा अपमान हुआ था। जीवन इतना स्मरणीय, आनंदमय, रोमांचकारी, उदात्त होता है जब मैंने पहली बार ही जाना। किसी भी उत्कट भावना का आनंद तत्संबंधी ग्रंथ पढ़कर और पुराण पढ़कर सुनकर कभी भी नहीं मिलता, उसका अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। विशाली के साहचर में एक ही भाव स्फुटित हो रहा था, वह था विशुद्ध प्रेम भाव। प्रेम मन के सर्वाधिक प्रभावशाली प्रेरणा है। प्रेम के धवल रंग के सम्मुख अपमान, प्रतिशोध और असूया के सभी लाल, काले और नीले रंग फीके पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेरे दिन का आधे से अधिक समय प्रतिदिन गंगा तट पर व्यतीत होता था। शेष समय व्यायाम, राज्यसभा, अश्वत्थामा, दुर्योधन से वार्तालाप करने में बीतता था और रात पुष्पित होती थी विशाली के साहचर्य में। अब मेरे लिए रात नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी, दिन ही दिन था। 24 घंटे प्रकाश जीवन उदारता पूर्वक मुझ पर सुवर्ण कुसुम लुटा रहा था। मेरे आसपास अनेक ऐसे स्नेही जन थे जो मेरे लिए स्वयं को भूले हुए थे। माता पिता, विशाली, सत्यसेन, अश्वत्थामा, शोण और राजा दुर्योधन। शोण अब कितना बड़ा हो गया था। वन केवड़ा के सरल लंबे दंड की तरह उसका शरीर कितना सुंदर दिखाई देता था। व्यायाम और स्वच्छ राग रहित मुक्त मन, इनसे उसका शरीर अब हृष्टपुष्ट हो गया था। अपने स्नेहमय स्वभाव के कारण वह सभी को प्रिय था। सबको बलवान और विनम्र लगता था, लेकिन मुझको वह भोला भाला बालक ही लगा करता था, क्योंकि उसकी वह दक्षता, कांपती हुई संयता आवाज और मेरे प्रति पग पग पर प्रकट होने वाले बंधु प्रेम की सहज सुंदर प्रतीति अब भी पहले जैसी ही थी। उसका शरीर बदल गया था, विशाल हो गया था, परंतु मन वैसा ही था, हिम जैसा स्वच्छ। कभी कभी मैं यह मानकर कि मेरे कवच कुंडल उसी को मिले हैं उसकी ओर देखता, तब वह मुझको बिल्कुल अपने जैसा ही लगता। कभी कभी तो वह मुझसे भी अधिक अच्छा दिखाई देता था। बस इतनी कमी थी कि उसका रंग कुछ श्यामल था। कि कवच कुंडल उसको नहीं मिले यह सोचकर वास्तव में उसको कैसा लगता था। बचपन में तो वह उनके लिए एकदम लड़ने लगता था, लेकिन अब वह मेरे संबंध में क्या सोचता होगा? द्वेष, असूया, घृणा, छी, उसकी किसी क्रिया में ऐसा मुझको दिखाई नहीं दिया। निर्मल भातृप्रेम का अप्रतिम प्रतीक था मेरा शोण। दुर्योधन के 99 भाई थे, अर्जुन के 4 भाई थे, लेकिन मेरा एक ही भाई था। भाई कैसा, वह दूसरा कर्ण ही था। राजा के सामने हो जाने पर अनेक व्यक्तियों ने अनेक वस्तुओं की ओर अनेक स्थानों पर मुझसे मधुर शब्दों में मांग की थी, लेकिन शोण ने क्या मांगा था? अंग राज्य का आधा भाग, संपत्ति, आमात्य का स्थान या सेनापति का? नहीं नहीं, मुझसे एकांत में मिलकर उसने कहा था, भैया अब तुम वास्तव में ही बड़े बन गए हो, मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं ही चाहता था कि मैं सदैव तुम्हारे समीप ही रहूं। मुझे तुम अपने श्वेत शुभ्र घोड़ों वाले रथ का साथी बना लो, बना लोगे ना? कितना विशुद्ध प्रेम था उसका। मुझको याद है कि उसकी वह मांग सुनकर मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने केवल थपथपा दिया। किसको मिला था शोण जैसा प्रेमी और विनम्र भाई? बचपन में मैं कौन हूँ यह सोचकर मैं व्यर्थ ही परेशान होता था। मैं शोण का प्रिय भाई नहीं था क्या? अब अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे मेरे प्राण प्रिय मित्र थे, ममतामय माता पिता थे, समझदार और सुंदर पत्नी थी, अंगदेश का स्वतंत्र राज्यपद था। मनुष्य इससे अधिक सुख की कल्पना और कर ही क्या सकता है? लेकिन फिर भी मेरे अंतर्मन का एक अपरिचित कोना कभी अतृप्त था, असंतुष्ट था। कुछ भी हो, फिर भी मैं था सुत पुत्र ही। सच पूछो तो मुझको अपने कुल का दुख नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह होता था। क्यों होता था यह मैं नहीं जानता था। कभी कभी अब भी तीव्र इच्छा होती थी कि शोण को लेकर हस्तिनापुर से रथ ऐसे भगाए कि सीधे चंपा नगरी में गंगा के किनारे ही रुके। शोण सीपीआई इकट्ठा करे, मैं रथ में से सूर्यदेव को ही और देखूं, संध्याकाल हो जाए, लौटते समय गरुण पक्षियों को देखकर शोण वही प्रश्न पूछे, भैया गरुण के तरह तुम जाओगे क्या ऊंचे और ऊंचे? मैं भी उसको उत्तर दूं, हाँ जाऊंगा, इतना ऊंचा कि तुमको कभी दिखाई भी नहीं दूंगा। लेकिन यह सब होता नहीं था, होना भी नहीं था। जीवन में पीछे कभी नहीं लौटा जा सकता। 9 राजा दुर्योधन से राजनीति पर मैं प्रायः वार्तालाप करता रहता था। बातचीत के दौरान पांडवों का उल्लेख होने पर शिकंजी आंखें विचित्र रंग बदलने लगती। समीप ही शकुनि मामा होते थे, वह उनको अनेक साहसी योजनाएं बताता। उनमें संभाव्य धोखों को मामा अपनी बुद्धि चातुर्य से दूर करते, मुझको उनकी हर सब योजनाओं में कपट की ही गंध आती थी। मैं एकदम उसका विरोध करता। तब शकुनि मामा कहते, राजनीति किसे कहते हैं यह तुम जानते नहीं हो कर्ण? तुम अपनी दृष्टि से संसार को देखने का प्रयत्न करते हो, लेकिन यह भूल है। राजनीति का आधार भावुक मन की निष्कपट भूमि नहीं है, वह बुद्धि के व्यायाम पर चला करती है। संसार कहता है भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है, लेकिन राजनीति में यही भाषा मन की वास्तविक भावनाओं को अव्यक्त रखने का साधन बनती है। राजनीतिक मनुष्य का मन जंगली चूहे की बिल जैसा होना चाहिए। जैसे यह किसी को पता नहीं चलता कि बिल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाता है, वैसे ही राजनीतिक के मन में क्या क्या है इसका किसी को पता नहीं चलने देना चाहिए। राजनीति कोई मंदिर में होने वाले प्रवचन का विषय नहीं है जिस पर सबके सामने चर्चा की जाए। उनके इन विचारों से मैं चक्कर में पड़ जाता था। मन को श्रीफल की उपमा देने वाले अश्वत्थामा की और जंगली चूहों के बिल की उपमा देने वाले शकुनि मामा की मैं तुलना करने लगता। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, प्रकृति ने मनुष्य के हाथों में जीवन किस लिए सौंपा है? स्वयं जलकर दग्ध होकर विश्व को प्रकाशित करने के लिए, या अपने क्षुद्र सुख के लिए औरों को अवसर पाते ही निर्दयतापूर्वक जलाने के लिए? मनुष्य प्रेम और सद्भाव से कभी नहीं रह सकेगा क्या? फिर प्राणी का मूल स्वभाव क्या है, प्रेम या क्रूरता? यदि क्रूरता ही है तो इसमें भी मनुष्य का क्या अपराध है? प्रकृति ने ही उसको क्रूरता का ज्ञान दिया है। यदि कहा जाएगा अश्वत्थामा सदैव कहता है देह में आत्मा है, तो फिर क्रूरता, द्वेष, असूया, प्रतिशोध, ये सब उस देह में रहने वाली आत्मा का ही आविष्कार है क्या? यदि यही बात है तो फिर संसार इनके लिए संबंधित व्यक्ति को दोष क्यों देता है? या ये सब मन के भाव हैं? यदि ऐसा भी है तो फिर प्रेम, त्याग, संयम, ये भी सब आत्मा के आविष्कार कैसे हो सकते हैं? मन केवल दो अक्षरों के शब्द में कितने महान रहस्य छिपे हुए हैं। मनुष्य सचमुच यह मन क्या भला है? संसार का प्रत्येक व्यक्ति मनोभावों के असंख्य रज्जुओं से जकड़ा हुआ एक हाथी नहीं है क्या? जहाँ का तहाँ निरंतर हिलता रहने वाला, व्याकुल, फिर भी अपने आप को स्वतंत्र और सामर्थ्यवान समझने वाला, और जिसको मन कहते हैं वह भी क्या है? एक केकड़ा नहीं है क्या? उसके असंख्य भावनाओं के डंक होते, चुलबुलाते हुए अपने तीक्ष्ण नोक आसपास के बालों में गड़ाने वाले, फिर भी एक दूसरे का आधार देते हुए मध्यस्थ देह के बोझ को आगे आगे खींचने वाले। मनुष्य की भावनाएं ऐसी ही नहीं है क्या? प्रेम, द्वेष, त्याग, लोभ, स्नेह, तिरस्कार, ममता, क्रोध, ये सब के सब उस मन के डंक है। अपने अपने क्षेत्र में मनमाने कुलबुलाने वाले, फिर भी देह को संभाल कर आगे ले जाने वाले, कहाँ यह कोई बता ही नहीं सकता। उसका आश्चर्यजनक तत्व ज्ञान बताने वाला अश्वत्थामा भी। मैं उन मामा भांजे की बातों को केवल सुनता हुआ एकटक अपने पैरों की ओर देखता रहता। दुर्योधन की आंखों से मेरा मौन छिपा न रहता। वह मेरे पास आकर मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहता, कर्ण रुष्ट हो गए हो क्या? जब तुम अपने पैरों की ओर देखने लगे तो जान लेना चाहिए कि तुम निश्चय ही रुष्ट हो, किसी गंभीर विचार में हो। एक बात अवश्य है कि तुम्हारे पैरों की ओर देख कर मुझको पूर्वचन द्वारा बताई गई एक सुखद बात अवश्य याद आ जाती है। कौन सी? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरे लिए मेरा सहायक पूर्वचन सदैव पांडवों में गुला मिला रहता है, उनकी सारी बातें वह मुझको नित्य बताया करता है। उसी ने एक बार मुझको बताया था कि वह युधिष्ठिर अपने भाइयों से प्रायः कहता है कि कर्ण के पैर अपनी राजमाता कुंती देवी के पैरों जैसे हैं। क्या कह रहे हो राजा? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर ध्यान से अपने पैर देखने लगा। वे आगे की ओर कुछ संकुचित हो गए थे। यह देखकर मुझको भी आश्चर्य हुआ। सचमुच वे राजमाता जैसे ही थे क्या? हो सकता है कि हों। संसार में एक ऐसा कुछ और कहीं पर हो ही नहीं सकता क्या? देखो कर्ण, यह धूर्त युधिष्ठिर की चाल है। आज वो तुम्हारे पैर अपनी माता के पैर जैसे बता रहा है, कल को वह यह भी कहने लगेगा कि राजमाता कुंती से तुम्हारा कुछ संबंध है। कल को वह तुम्हें पांडवों का भाई भी बता सकता है, इसका विश्वास ही क्या? राजन, तुम कर्ण को क्या दूध पिता बच्चा समझते हो? मेरी राधा माता ही एकमात्र मेरी माता है। वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह कर्ण तीन बातों के लिए अपने प्राण की भी अर्पण कर सकता है। पहली है मेरी माता राधा, दूसरी सूर्यदेव की आराधना, और तीसरी बात है मेरा वचन। मैंने दुर्योधन को तत्क्षण उत्तर दिया, मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, किंतु उसको अपनी मान मर्यादा की सदैव रक्षा करनी चाहिए। माता, वचन और धर्म, ये तीनों मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ मान मर्यादाएं हैं। समय आने पर प्राण देकर भी इनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी ही हैं ये। 10. ये सब बातें मैं अश्वत्थामा के मधुर साचर में सीख गया था। उसका प्रतीक शब्द अमृत स्नान सा होता था। उसके पिताजी ने केवल शस्त्र शस्त्र और कुछ कठोर सामाजिक नीति नियम ही देखे थे, इनके अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन अश्वत्थामा तो मुझको सर्वगुण संपन्न प्रतीत होता था। मुझको वह जीवन यात्रा का सबसे अधिक अध्यवसायी और सूक्ष्मदर्शी, फिर भी अत्यंत विनम्र यात्री लगता था। वह वीर योद्धा था। स्नेही मित्र था, आज्ञाकारी पुत्र था, प्रकृति का रसिक उपभोक्ता था। आसपास की छोटी मोटी बातों से जीवन सतर्क संगति उसने कितनी सूक्ष्मता से बैठाई थी। उसके मौन के कारण कुछ लोग उसको कुंठित क्षितिज वाला कहते थे, लेकिन मैं यह नहीं मानता था। भला अश्वत्थामा कुंठित क्षितिज का कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो उसका कोई क्षितिज था ही नहीं। चारों ओर का असीम क्षितिज उसके अनेक विध व्यक्तित्व में सरलतापूर्वक समा नहीं गया था क्या? मैंने उसको अत्यंत निकट से देखा था। मुझसे उसने अनेक बार घंटों तक बातें की थी। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु द्रोण ने सबको अपना विकास करने के लिए उपयुक्त अवसर कभी दिया ही नहीं। वे कहते हैं कि वह गुरु द्रोण के विराट व्यक्तित्व के वटवृक्ष की छाया में कुकुरमुत्ते की तरह बड़ा था। कितने अन्यायपूर्ण और एकांगी विचार हैं ये। इस राजनगरी में सच्चे अर्थ में अश्वत्थामा को कोई समझ नहीं सका था। मुझको तो उसका नितांत भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई देता था। इस हस्तिनापुर में मुझको अन्य कोई ऐसा दिखाई ही नहीं दिया जिसका व्यक्तित्व अश्वत्थामा के व्यक्तित्व की तरह विलक्षण और स्वतंत्र हो। कभी कभी तो वह मुझको गुरु द्रोण से भी अधिक श्रेष्ठ लगता था। हिमालय के धवल शिखर जैसा ऊंचा, गंगा के पात्र की तरह विशाल। एक बार मैं प्रातःकाल गंगा तट पर जाने के लिए निकला। मार्ग में मुझको अश्वत्थामा मिल गया। देह पर शुभ्र उत्तरीय डालकर वह जल्दी जल्दी जा रहा था। सद्य विकसित कमल की तरह उसका चेहरा प्रसन्न और प्रफुल्ल था। उसके हाथ में अदुम्बर की संविधा थी। शायद वह प्रातःकाल का हवन करने जल्दी जल्दी यदुशाला की ओर जा रहा था। उसको देखते मैंने रथ रोक दिया। राजा होने के बाद मैं रथ द्वारा ही गंगा तट पर जाता था। वैसे ही मेरे रथ का सारथ्य क्षुण करता था, किंतु गंगा तट पर मैं अकेला ही जाता था। घोड़े रोकते हुए मैंने अश्वत्थामा से कहा, अलभ्य लाभ गुरुपुत्र, तुम्हारे दर्शन से अब मेरा पूरा दिन बड़े आनंद से बीते। जिसके मिलने कोई आशा न हो ऐसे दुर्लभ अतिथि से आज शायद भेंट भी हो जाए। वह सहज हंसता हुआ बोला, मेरे दर्शन तुम्हारे लिए इतने शुभ हैं क्या? तो फिर मैं प्रतिदिन ही गंगा की ओर जाने वाले तुम्हारे इस मार्ग पर आकर बैठ जाया करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे दर्शन शुभदायक हैं यह निश्चित है। मेरे साथ गंगा तट पर चल रहे हो क्या? मैंने उसे प्रश्न किया। नहीं कर्ण, अब हवन का समय होता जा रहा है, मुझको जाना ही चाहिए। कम से कम यह संविधाएं तो उस समय पहुंचनी ही चाहिए। हाथ में लगी संविधाओं की छोटी सी गठरी ऊपर करता हुआ वह बोला, बस इतनी सी बात है ना, तो चलो तुम्हारी समुदाय यदुशाला पहुंचाते हुए ही हम लोग गंगा तट पर चलते हैं। आओ रथ में आ जाओ, मैंने उससे आग्रह किया। वह मेरी बात टाल ना सका, वह रथ में चढ़ा। हम लोग यदुशाला की ओर चल दिए। पक्षियों का कटरव शुरू हो गया था। रथ के चक्र के साथ ही मेरे मन में स्मृतियों के अनेक आवर्त घूम रहे थे। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि गति और स्मृति में आपस में अवश्य कोई गूढ़ संबंध है, नहीं तो गतिमान वाहन में स्मृतियों की इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो जाती? मुझको तात धीरथ की याद आई, इसीलिए मैंने गुरुपुत्र से पूछा, पिता पुत्र के नाते के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं, स्पष्ट कहो। उसने स्वाभाविक ढंग से कहा, सूर्य का प्रतिबिंब नदी के जल में पड़ता है, ऐसे ही पिता का अपने पुत्र पर पड़ा करता है। जीवन अनंत है, पुत्र के रूप में मानो पिता ही पुनः जन्म ग्रहण करता है। जन्मदान का यह अखंड क्रम सृष्टि के आदिकाल से इसी तरह टूट चला आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा अपना क्या अनुभव? मेरा कर्ण, मेरा अत्यंत प्रखर अनुभव है, लेकिन वह मैंने किसी को नहीं बताया। इतना योग्य व्यक्ति ही मुझको आज तक कोई नहीं मिला। आज तुमको अवश्य बताऊंगा मैं वह। यदि ऐसी बात है तो आज वह प्रखर अनुभव अवश्य बताओ। वह ऐसी आवाज में बोला जैसे कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त रहस्य बता रहा हो। मेरे पिताजी ने कौरव पांडवों की सारी युद्ध विद्या सिखाई, यह तुम जानते ही हो, लेकिन उन्होंने इस बात की पूरी सावधानी रखी कि वह पूर्णता में उनके हाथ न पड़े। धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध अर्जुन को भी उन्होंने कुछ दिन अंधेरे में रखा था। कैसे? सुनो, अर्जुन को छोटे गले का एक जलप्रात देकर मेरे पिताजी उसको प्रतिदिन पानी लाने के लिए गंगा तट पर भेजते थे। सबको यह काम करना पड़ता था, लेकिन मुझको वे बड़े गले का जलपात्र देते थे। उस कारण मैं झट से पहले ही जल लेकर युद्धशाला पहुंच जाता था। पांडव और कौरव के आने से पहले पिताजी मुझको एक महान अस्त्र नारायण शास्त्र की शिक्षा देते थे। तो तुम नारायण शास्त्र जानते हो? हाँ, बाद में अर्जुन को भी उसको जान गया। पिताजी को वह योग थी उसने जान ली, उसने उनके पीछे पढ़कर वह नारायण शास्त्र जान लिया। हम दोनों के अतिरिक्त और कोई उसको नहीं जानता। तो फिर इससे पिता पुत्र के नाते के संबंध में तुमने क्या निष्कर्ष निकाला है अश्वत्थामन? अंत में मैंने उसको अपना मूल प्रश्न याद दिलाया, यही कि पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है, आवश्यकता होने पर अस्त्र भी बोल सकता है। लेकिन भले ही हम लोगों को नारायण शास्त्र मिल गया है, फिर भी धनुर विद्या में दक्षता तुमने प्राप्त की है, वह हम नहीं प्राप्त कर सके हैं। सच कांड, तुमको यह किसने सिखाया? उसने मुझसे उल्टा प्रश्न किया। अर्थात मेरे पिता ने ही? अश्वत्थामा, मैं एक सूत पुत्र हूँ, मुझको अन्य कोई कैसे सिखा सकता है? पिता पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है ना, तो यही समझ लो पिता धीरथ ने मुझको सब सिखाया है। तुम्हारे पिता धन्य है कर्ण, और मेरे कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। इतने में पूर्व दिशा प्रकाश से भराई, सूर्यदेव अंधकार का पट फाड़ कर ऊपर निकले। बातों में हम युद्धशाला के पास आए। एक ऋषि कुमार को अश्वत्थामा ने अपने हाथ की सुविधाएं दे दी। हम दोनों ही गंगा की ओर चलने लगे। सदा मैं अकेला ही जाया करता था, आज हम दोनों थे। मेरे मन में नारायण शास्त्र चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर में ही हम गंगा पर आ गए। नित्य कर्म के लिए मुझको थोड़ी सी देर हो गई थी। प्रतिदिन मैं सूर्योदय से पहले कमर तक पानी में खड़ा हो जाता था। आज सूर्योदय हो जाने पर भी मैं पानी से बाहर था। मैं जल्दी जल्दी रथ से कूद पड़ा। अश्वत्थामा भी नीचे उतरा। प्रातःकाल की भस्ती स्वर्ण किरणें चारों ओर स्वच्छंद फैल गई थी। सूर्य किरण देख कर मुझको इस बात पर सदैव बड़ा दुख होता था कि वे आकार रही थे। यदि वे साकार होती तो मैं उनको यथेष्ट मात्रा में ग्रहण कर लेता। यदि पर मैं सुगंध होती तो मैं उनको जी भरकर सूंघता। यदि वे किरणें मनुष्य को इस तरह की बातें कर सकती तो मैं उनसे घंटों बातें किया करता, और इतने पर भी सदैव अतृप्त ही रहा होता। मुझको ऐसा क्यों लगता था यह बताने में मैं असमर्थ था, लेकिन ऐसा लगता था यह सत्य है। कर्ण, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि जीवन असीम है। इस गंगा किनारे पर आकर मुझको उसकी तीव्र अनुभूति हो रही है। अश्वत्थामा नीचे उतरते ही मुझसे बोला, सो कैसे? सोनाली किरणों से चमकते हुए उसके मुख की ओर देखकर मैंने उससे पूछा। जल में परावर्तित होकर कुछ किरणें हिलते हुए उसके गाल के मुख पर पड़ रही थी। उससे उसके पहले से भी तेजस्वी आंखें एक विलक्षण तेज से चमक रही थी। वह देखो, परले किनारे पर घास पर उसकी कितनी बूंदें चमक रही हैं। परले किनारे की ओर उंगली संकेत करते हुए उसने सहज भाव से, हाँ, मैं बोला, कल रात यहाँ उमा शंकर आए थे। उन्होंने आँख में चौड़ियाँ खेली होंगी। इस खेल में उमा के गले के मोतियों की माला टूट गई होगी। खेल समाप्त होने पर अचानक उमा का ध्यान उस ओर गया होगा। आप सदा ऐसे ही आपाधापी करते हैं, यह कहकर उन्होंने शंकर को प्यार भरा उलाहना भी दिया होगा। इतने में प्रातःकाल हो गया होगा। घबरा कर जितने मोती हाथ लगे उतने ही जैसे तैसे समेट कर पाँव फटने से पहले ही अपने पति का हाथ पकड़कर वे पलायन कर गई होंगी। उस समय जो मोती शेष रह गए थे वे ही अब चमक रहे हैं। उसकी ये बूंदे उमा शंकर का रहस्य प्रातःकाल की इन सुनहली किरणों को हंस हंस कर बता रही हैं। अपनी कल्पना से स्वयं आनंदित होते हुए मैंने उसकी ओर देखा। नहीं कर्ण, तुम भूल रहे हो, उमा शंकर कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आने लगी? और उन जैसे भंगेड़ी पति के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाली उस बेचारी उमा के पास, आभूषण रहित उमा के पास मोतियों की माला भला कहाँ से आएगी? चमकते हुए उसके इन बूंदों की ओर एकटक देखता हुआ शांत भाव से बोला, तो फिर तुम ही बताओ कि उसकी बूंदे क्या है। कर्ण, उसकी बूंदें मनुष्य के जीवन का एक उत्कृष्ट प्रतीक हैं। अरे, उसकी बूंदें ही क्यों, प्रकृति के प्रतीक वस्तु विधाता ने मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए ही बनाई है। हाँ, मनुष्य की आंखें खुली होनी चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, तभी वह जान पाएगा कि संसार विधाता की एक भव्य और अखंड पाठशाला है। तभी वह विश्व सृष्टि का वास्तविक रहस्य जानने के लिए उत्सुक एवं जिज्ञासु शिष्य बन सकेगा। अश्वत्थामा, पहले तुमने एक बार मनुष्य के जीवन को श्रीफल जैसा बताया था, मुझको अब भी याद है। अब तुम कह रहे हो कि उसकी बूंद भी मनुष्य के जीवन का प्रतीक है, इस बात को तनिक स्पष्ट करोगे क्या? देखो कर्ण, उसकी ये बूंदें कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, यह कोई जानता है क्या? मनुष्य की भी यही दशा है, वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, यह भी कोई नहीं बता सकता। और आगे सुनो, यह कैसा है, उसकी ये बूंदें किसी का प्रकाश लेकर चमकती हैं और ऐसे लगती है मानो प्रत्येक बूंद एक छोटा सा अलग सूर्य ही हो। उसकी चमचमाती हुई बूंद यह हवा के झोंकों से एक साथ मंद मंद झोंके खाने लगती है। उनके पास जो प्रकाश किरणें होती है उनको अपने से दूर फेंकती है, अपनी ओर दिखाने वाले आह्लादित करती है। परंतु तनिक जोर की हवा आते ही ये प्रसन्न ओस की बूंदें असंख्य जलबिंदु होकर नीचे मिट्टी में विलीन हो जाती हैं, छू तक किए बिना बिना किसी आक्रोश के। मनुष्य भी ठीक ऐसा ही है, एक ही परमेश्वर के असंख्य रूप में घूमने वाले ये जीव हैं। अरे, इनमें से कुछ जीव तो इतने दिव्य होते हैं कि साक्षात परमेश्वर ही प्रतीत होते हैं। ये सब अपना जीवन बिताते हैं पुरुषार्थ की किरणों से जगत में प्रकाश भरते हैं, सुख के क्षणों में आनंद से झूमते हैं और मृत्यु की आहट सुनाई देने पर चुपचाप उसके अधीन हो जाते हैं। पीढ़ियों से यही होता चला आ रहा है। पहले दिन मिट्टी में मिली हुई ओस की बूंदें दूसरे दिन तृण पर्णों पर जैसे फिर तैयार हो जाती हैं, उसी प्रकार मृत मनुष्य नई पीढ़ी के रूप में फिर तैयार हो जाते हैं। जीवन असीम है, सदा यह बात मैं क्यों कहता रहता हूँ, यह तुम अब जान गए होगे। तुम सच कह रहे हो अश्वत्थामा, परंतु कुछ लोगों की ओर देखने पर इसका जीवन तुम्हें कथानुसार रोज के मुझ जैसा होगा ऐसा नहीं लगता। उनको कभी सुख की हिंडोले पर झूलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, वे कभी कोई पराक्रम नहीं करते, जीवित होते हुए वे मृत होते हैं। तुम्हारे इन विचारों में उनका क्या स्थान होगा? जीवन के ओस के बूंदों की उपमा देकर तुमने अपनी सौंदर्य दृष्टि प्रकट कर दी है, परंतु जीवन इतना सहज सुंदर नहीं है, इतना सरल नहीं है। नहीं कर्ण, तुम जिन लोगों के बारे में कह रहे हो वह भी ओस की बूंदों जैसे ही होते हैं। अंतर यही है कि ये बूंदें तृण पर्णों की दूसरी ओर चिपटी हुई होती है। सूर्य की दिव्य किरणों उन तक पहुँचती ही नहीं, वे प्रकाश से वंचित रहती है। अज्ञान के घने अंधकार में पड़ी हुई होती हैं वे बूंदें, और संसार में जितना क्रूर अज्ञान है उतना क्रूर तो मनुष्य भी नहीं होती, मृत्यु भी नहीं होती है। आह, तो उसकी उन बूंदों को प्रकाश कब मिलेगा? ऐसे लोगों के जीवन में सूर्य कब चमकेगा? पराक्रम को उत्तुंग पर्वत से वे कब खड़े रहेंगे मृत्यु की देहरी पर? जो अज्ञान में भटकते रहते हैं उनको मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई सहज निष्पक्ष और सत्यप्रिय गुरु नहीं मिल सकता, उनकी मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो फिर उनको जल्दी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, यही कहना चाहते हो ना तुम? कदापि नहीं। जिस जीवन को प्राप्त करना हमारे अधिकार में नहीं है उसको गंवाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। आत्महत्या का अर्थ है भावुक मन का आत्मा पर किया गया घोर अत्याचार। तो फिर ऐसे लोग आखिर क्या करें? मरने तक केवल जीते रहें या मृतवत जीते हुए जीवन यापन करने का झूठा ढोंग रचें? नहीं, ऐसे लोगों को सहनशील धरती की ओर देखना चाहिए। उसकी तरह असंख्य आघात सहने के कारण ही अपनी शक्ति सहन करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, शारीरिक संपत्ति और लौकिक नहीं बल्कि आत्मिक, और उसके बाद उचित समय आने पर अनंत में विलीन हो जाना चाहिए। आत्मा के संक्रमण के अनुभव समृद्ध करके जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि काल अखंड है। जीवन भीख मांगने वाली से मिलने वाली वस्तु नहीं है, जीवन वह अखंड यात्रा है जो अनंत से अनंत की ओर चलती रहती है। मैं भावाभिभूत होकर एकटक उसी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे ज्ञान की चिंगारियां निकल रही थी, वह भी शांत लग रहा था। मुझको जल में उतरने में देर हो गई थी, यह भी ध्यान मुझको नहीं लगा। उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में मैं उससे बोला, मित्र, मेरा मन कभी कभी परस्पर विरोधी मानसिक विचारों से बुरी तरह उलझ जाता है। विचारों की किसी एक पार्श्वभूमि पर मैं कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। मैं कौन हूँ यह स्वयं मैं ही अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मेरे हृदय में परस्पर विरोधी भावनाओं का विचित्र संघर्ष क्यों है? यह असामंजस्य क्यों हुआ? यह द्वैत कब अद्वैत होगा? मैं ऐसा कर्ण कब बनूंगा जो भीतर बाहर एक ही अखंड हो? एक कर्ण, सबको स्मरणीय लगने वाला कर्ण, अपने तीर से चमकने वाला कर्ण, अपने वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह जानने वाला कर्ण। मेरी ओर अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ मुझको बीच में ही रोक कर वह बोला, कर्ण, चूंकि तुम्हारे कानों में जन्मजात कुंडल है इसलिए तुम्हारी परंपरा निश्चय ही अति तेजस्वी और अति प्राचीन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी केवल परंपरा का ही नीरस गुणगान मत करते रहो। तुम केवल वर्तमान पर अपनी दृष्टि रखो, परंपरा के गर्भ से निर्मित होने वाला भविष्य तुम्हारा नहीं, इस कुंठा को पनपने मत दो। उस भय से हाथ में आए वर्तमान को भी पैरों से मत रौंदो। जिसने एक बार यह विश्वास कर लिया कि जीवन असीम है वह कभी उदास नहीं होता, वह अपने आत्मविश्वास को कभी लड़खड़ाने नहीं देता। अज्ञानी और प्रवाहपतित लोगों का अनुकरण वह कभी नहीं करेगा, वह हल्के फुल्के मनोरंजनों को खो जाएगा और यदि उनमें रम गया तो फिर वह कितना भी बलवान क्यों न हो, उसकी परंपरा कितनी महान और श्रेष्ठ क्यों न हो, वह धूल में मिले बिना नहीं रहेगा। उसकी तथाकथित श्रेष्ठता और परंपरा का नाम तक शेष नहीं रहेगा। संसार के सब लोग उसको अज्ञानी, आत्मवंचित और कर्तव्य विमूढ़ ही कहेंगे। कोई भी उसकी गाथा नहीं लिखेगा, किसी ने लिखी भी हो तो कोई पढ़ेगा नहीं। इसीलिए कर्ण, मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि ऐसे अंतर्द्वंद में तुम अब भी पड़े हुए हो तो तत्काल अपने को संभालो, आत्म परीक्षण कर एक बार अच्छी तरह विचार कर लो कि तुम कौन हो। मुझको विश्वास है कि तुम अकेले ही संसार को दिव्य मार्ग दिखा सकोगे। अपना अंतर्द्वंद मिट जाएगा तो यह संसार एक दिन निश्चय तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगा, इतने महान हो तुम। उसकी आंखें अत्यंत शांत और निश्चल थी, एक अज्ञात अपूर्व तेज उसके गौरव वर्ण गोलाकार चेहरे से अविरत बरस रहा था। मुझको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसकी वाणी में कोई गूढ़ और शाश्वत सत्य भरा हुआ हो। उसके निरपेक्ष और स्पष्ट परामर्श से उसके प्रति मेरा आदर भाव दुगुना हो गया। संसार में मुख प्रस्तुति करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं, दोष बताने वाले थोड़े ही होते हैं, मार्गदर्शन करने वाले तो बिरले ही होते हैं। उसके शब्द मेरे कानों में अवरत गूंजने लगे, तेरी परंपरा तेजस्वी है, वर्तमान पर अपनी दृष्टि रखो, भविष्य की चिंता कर कुंठित मत बनो, संसार को दिव्य संदेश। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अश्वत्थामन, जो आज तक किसी को नहीं बताया वह आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा गुरु अन्य कोई नहीं, धनुर्विद्या के लिए मैंने साक्षात सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया है। उनसे सदैव मुझे दिव्य संदेश प्राप्त होते रहते हैं, मैं स्वयं उनकी अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि किस भाषा में मैं उनसे कुछ नहीं कहता। जब तक कोई असंभावित कृत्य मुझसे संपन्न होता है तब तक मेरे गुरु के आदेश से ही होता है। मैंने आकाश की ओर उंगली उठाते हुए देखा, हम दोनों ने उस तेजो निधि को नमस्कार किया। मेरे कानों में अश्वत्थामा के कुछ शब्द गूंज रहे थे, काल अखंड है, जीवन असीम है। एक प्रश्न पहले ही अनेक बार मेरे होठों पर आ चुका था लेकिन मैं उसे पूछ नहीं सका था। वह प्रश्न आज पूछने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। वह सदा अपने सिर पर धवल वस्त्र की एक पट्टी लपेट कर उसकी गांठ हनु के नीचे बांधा करता था। उसके सिर पर कोई घाव तो नहीं था, यह संदेह मुझको बार बार हुआ था। अंत में अर्घदान को लौटते समय मैंने उसे पूछ ही लिया, अश्वत्थामन, तो अपना सिर सदैव आच्छादित क्यों रखते हो? सूर्यकिरण के कष्ट होता है क्या इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हल्के गंगा का पात्र और सूर्यकिरण इनके प्रति मेरे मन में अद्भुत आकर्षण है। लेकिन मैं सिर पर वस्त्र का आवरण क्यों डाले रहता हूँ? यह आज नहीं, समय आने पर तुमको अवश्य बताऊंगा, निश्चय ही बताऊंगा।